महाबंध पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध को अधिकार को देखते हुए, तृतीय जो अनुभाग बंध अधिकार है उसको देखते हुए हम पांचवें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए, 53। ये जघन्य अनुभाग बंध के सन्निकर्ष के प्रकरण में हम मार्गणाओं में बात देख रहे थे। देवों में हम देख रहे थे और फिर भवनवासी की बात चालू की थी। देखो यहाँ कन्फ्यूजन कल था और पंचेंद्रिय जाति और औदारिक अंगोपांग के लिए, क्योंकि सामान्य से देवों में जो पंचेंद्रिय जाति का जो जघन्य हो रहा है वहां औदारिक अंगोपांग का भी जघन्य हो रहा है। देखो पेज नंबर 51 निकालो, 51 पेज। जो पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कर रहा है, मिला पहला पैराग्राफ। पंचेंद्रिय जाति कैसी है? प्रशस्त प्रकृति है, सर्व संकलेश में जघन्य बन देगी। वहां तिर्यंच गति वगैरह वगैरह जो अप्रशस्त प्रकृति है वो नियम से अनंत गुणा बनती है, और औदारिक शरीर अंगोपांग नियम से बनते हैं, वो जघन्य भी और अजघन्य भी। पंचेंद्रिय के जघन्य के साथ उसको भी जघन्य अजघन्य लिया, ये सामान्य से देव में। पर कहां पर सर्व संकलेश सामान्य देव में, सामान्य देव में सर्व संकलेश में। अब यहां भवनवासी वगैरह में क्या है? हाँ उसमें नहीं, मगर उसमें दो अलग अलग बातें हैं, अभी अभी ने पढ़ी भी नहीं है। देखो 53 पेज निकालो। हाँ वही वो ठीक है, वो तो सामान्य से देव है, ऊपर के देवों में वो घटित होता है। पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कौन रहा है, कर रहा है? पद्मलेशा वाले देव, तो वहाँ उदारी कंगोपांग वो भी जघन्य बन रहा है, वो तो वहाँ तो ठीक है। परंतु जहाँ तत्प्राग संकलेश में वो जघन्य बनती है पंचेंद्रिय जाति, तो पंचेंद्रिय जाति के साथ औदारिक अंगोपांग भी तो बंधना चाहिए था, यही प्रश्न था ना। जहां वो जघन्य है तो ये भी जघन्य होना चाहिए, ऐसा ही लगता है ना। जहां पंचेंद्रिय जाति का जघन्य है वहां औदारिक अंगोपांग का भी उसी के साथ बंधेगी वो। मैं अंगोपांग की बात कर रही, जहां पंचेंद्रिय जाति से बंधना शुरू होती है वहां औदारिक अंगोपांग भी बंधेगा। परंतु देखो यहाँ ये बात सोचनी है कि जहाँ दोनों का विकल्प है, जैसे हम अरति हास्यरति और अरतिशोक में देखते थे, वहाँ वो मध्यम परिणाम में जगह नहीं कहा था, परंतु वहाँ बात अलग थी। और यहाँ तो औदारिक अंगोपांग एक इंद्रिय के साथ तो बनती नहीं है, पर बनती तो पंचेंद्रिय के साथ ही बंधेगी। पर पंचेंद्रिय जाति का जगह मध्यम परिणाम में जगह ने बताया, और औदारिक अंगोपांग का तत्प्राय के संकलेश में जघन्य बताया, ये डिफरेंस है ख्याल में, इसलिए यहाँ की ये बात हो रही है। देखो तीर्य जगति का जघन्य मध्यम परिणाम में पेज नंबर 53 पर, वहां दोनों जाति बन सकती, वहां दोनों जाति बनती है और औदारिक अंगोपांग कदाचित बनती पर अनंत गुण अधिक बताई। दो जाति जहां बनती, तीरंज गति के जघन्य के साथ औदारिक अंगोपांग कदाचित बंधेगी, तीरंज गति के जघन्य के साथ लगा रहे ना मध्यम परिणाम में ना एकेंद्रिय या पंचेंद्रिय, वही तो था ना। देखो 53 पेज निकालो, ये भवनवासियों में ये गड़बड़ी लग रही है हमको, ये ख्याल में नहीं आ रहा है कैसे क्या। देखो फिर से भवनवासी की शुरुआत से पढ़ते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और सौधर्म ईशान कल्प के देवों में सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान, वो छोड़ो। तीर्यंच गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब इसको हमको कंपेयर करना है सामान्य देवों के साथ, पेज नंबर 50 पर। वहां तीर्यंच गति का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, मध्यम परिणाम में है, वो एकेंद्रीय जाति भी बांध सकता है पंचेंद्रीय जाति भी संग। वहां क्या लिया है, वो एकेंद्रीय जाति कदाचित बांधेगा और बांधेगा तो जघन्य भी करेगा, और पंचेंद्रीय जाति और औदारिक अंगोपांग कदाचित बांधेगा जो अनंत गुना अधिक होगा सामान्य देव में, क्योंकि सामान्य देव में पंचेंद्रीय जाति का जघन्य कहाँ होता है, पद्मलेशा वाले देवों में सर्व संकलेश में, जो मध्यम परिणाम में अनंत गुणा बंधेगी। ये तो बात समझ में आई है। ऐसे भवनत्रिक में क्या पोजीशन है, तीर्यंच गति का जघन्य भी मध्यम परिणाम में हो रहा है, परंतु यहाँ एकेंद्रीय जाति भी बन सकती है पंचेंद्रीय जाति भी बन सकती है, दोनों का जघन्य मध्यम परिणाम में होता है। पर यहाँ पर औदारिक अंगोपांग अगर बनता है, देखो नहीं ना बताया अनंत गुणा अधिक बताया, वही तो यानी उनका अपना जघन्य तीर्यंच गति पंचेंद्रीय जाति के साथ होगा। हाँ, पंचेंद्रिय जाति शुरू हुआ तो औदारिक अंगोपांग का भी शुरू होना चाहिए, औदारिक शरीर तो होगा ही अनंत गुणा, पर औदारिक अंगोपांग को भी अनंत गुणा लिया है। पर क्यों होता, और औदारिक अंगोपांग बिना एकेंद्रिय के बिना कैसे होगा शुरू। अब देखो फिर से, अब तीर्यंच गति के जघन्य के साथ जो मध्यम परिणाम है, औदारिक अंगोपांग का कदाचित बंद करता है अनंत गुणा लिया है,
तो तीर्यंच गति का जघन्य एकेंद्रीय जाति के साथ भी
होता है ना।
तो एकेंद्रीय जाति का जब भी बंद हो रहा है तभी तीर्यंच गति का जघन्य हो जाएगा, और उसके ऊपर जब पंचेंद्रिय का चालू होगा तभी तीर्यंच गति का अनंत गुणा
नहीं होगा। तीर्यंच गति के जघन्य के साथ दो ही जाति बन रही है, नहीं डिस्प्यूट की बात नहीं है। देखो देखो क्या कहते हैं, दो जाति बनती है तो यहाँ पंचेंद्रीय जाति की बात की कहाँ की। देखो तीरंज गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव दो जाति, फिर पढ़ते छह संस्थान छह सहनन दो विहाय गति त्रस्थावर सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, और वो जघन्य भी होगा और अजघन्य भी होगा, यानी पंचेंद्रीय जाति का भी जघन्य कर सकता है, नक्की हुआ ना। और पंचेंद्रीय जाति बंधेगी तभी तो अन्य छह संस्थान छह सनन का विकल्प होगा, यानी वो तीर्यंच गति के जघन्य के साथ पंचेंद्रीय जाति का जघन्य होता है, ये नक्की हुआ। यानी वो दोनों जाति वहां ले ली उन्होंने, वो जघन्य भी। आप कहां, आप सामान्य देव में देख रहे 53 पेज आप उठे थे बीच में ना, मैंने 53 पेज बताया था। हाँ, पर उसमें पंचेंद्रिय जाति को अनंत गुणा कहा और पंचेंद्रिय जाति में औदारिक अंगोपांग को अनंत गुणा कहा, ये बात नहीं घटित नहीं हो रही। यहाँ कुछ उसके स्वामित्व में भी कोई विविधता होने दो ना, पर विविधता होने में दोनों एक साथ बनती है। हाँ, जो पीतलेशा वालों को दोनों एक साथ बन रही है तो उसमें कोई कई गड़बड़ी लग रही है। देखो फिर से देखते हैं, यहाँ असंगी से आए हुए की बात, पर यहाँ तो सौधर्म ईशान तक के देवों की बात ली है, पर्याप्त कोई होता है? फिर से देख लेते हैं। अब ये दोनों जाति का जघन्य तीरंज गति के साथ बताए ना, और फिर नीचे देखो औदारिक शरीर वगैरह तो नियम से बंधेगी अनंत गुणा, वो तो समझ में आता है क्योंकि सर्व संकलेश में वो जघन्य बनती है। औदारिक अंगोपांग आतप और उद्योत का भी अनंत गुणा बताया। यही लेना है कि पंचेंद्रीय जाति वो प्रतिपक्षी है इसलिए उसको यहाँ जघन्य लिया है, और औदारिक अंगोपांग ये प्रतिपक्षी नहीं है, ये उसका कारण हो सकता है। वही तो प्रश्न तो इसीलिए उठ रहा है ना, जिस विशुद्धि में वो या जिस संकलेश में औदारिक अंगोपांग का वहां क्योंकि दोनों ही बंधेगी, पर वहां पंचेंद्रीय जाति का जघन्य नहीं कहा, पंचेंद्रीय जाति का जघन्य मध्यम परिणाम में कहा। देखो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, पहले यहाँ इसको देख ले। यहाँ से औदारिक अंगोपांग आतप और उद्योत का बंध जो अनंत गुणा अधिक होता है क्योंकि तत्प्राग संकलेश में वो जघन्य बताया था। अभी ये तो हमने पढ़ी थी बात, अब थोड़ा पंचेंद्रीय जाति का नीचे पढ़ेंगे। यहाँ से आज का विषय शुरू होना है। अब पंचेंद्रीय जाति का जघन्य अनुभाग कहाँ होता है? मध्यम परिणाम में। वहां तीरंज गति भी बन सकती है, मनुष्य गति भी बन सकती है, इसलिए दो गति लिए, छह संस्थान छह सहनन द्वानु पूर्वी, जैसे ऊपर लिए थे तीरंज गति के साथ, दो विहाय गति, स्थिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब देखो यहाँ पर भी जैसे ऊपर लिया था तीरंज गति के जघन्य के साथ पंचेंद्रिय जाति का तो जघन्य भी बताया था, और औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग इनका अनंत गुणा बताया था। ऐसे यहाँ पर भी लिया, देखो औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्बन शरीर, औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघु चतुष्क बादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है, क्योंकि पंचेंद्रीय जाति का जहां बंध है वहां अंगोपांग नियम से बंधेगा, परंतु जो अनंत गुणा अधिक होता है यानी मध्यम परिणाम में वो अनंत गुणा हो जाता है, यानी वह अनुभाग में कैसे क्या घुटाला ये पता नहीं आ रहे। हाँ ये पूरा पढ़ लेते। उद्योत का कदाचित बंद करता है, ये कदाचित में गई और अंगोपांग नियम से में गया था, जो अनंत गुणा अधिक होता है। वो पंचेंद्रिय का बंध है तो त्रस का नियम से बंद करता है, परंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। देखो सामान्य देवों में जहाँ पंचेंद्रिय जाति का जघन्य है वहाँ औदारिक अंगोपांग का भी जघन्य होगा, जरा देख लो। पेज नंबर 51 जो अभी हमने पहले देखा था, 109 नंबर का पॉइंट, चौथी लाइन, पंचेंद्रीय जाति के जघन्य के साथ बता रहे औदारिक तेजस कार्मण औदारिक अंगोपांग लिया यहाँ पर, और वो जघन्य भी लिया, परंतु भवनत्रिक में पंचेंद्रीय जाति के जघन्य के साथ औदारिक अंगोपांग को अनंत गुणा लिया। ये डिफरेंस एक बात, बाद में और भी देखेंगे हम। उद्योत का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, वो कदाचित में समझ लेते हम। हाँ वो बराबर त्रस का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यानी ऐसी यहाँ कोई बात है कि अति संकलेश में उसका जघन्य नहीं बन रहा अंगोपांग का, पहले बंद है पर वहां तो या तो पंचेंद्रिय का यहाँ जघन्य नहीं है, ऐसा लेना पड़ेगा। अंगोपांग बनता है तो पंचेंद्रिय जाति बंधेगी बंधेगी, यानी ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है. पंचेंद्रिय जाति के साथ रस को तो नियम से लिया, वो जगन्य भी लिया अजगन्य भी लिया. और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है. इसी प्रकार पंचेंद्रिय जाति के समान जो पंचेंद्रिय जाति के साथ बनती है, चार संस्थान, चार सहनन, दो विहाय गति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेय की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए. यहाँ अंगोपांग को नहीं लिया. एक बात समझ में आती बात, यहाँ अंगोपांग को नहीं लिया है, पंचेंद्रिय के साथ अंगोपांग को नहीं लिया है. ओरिजिनल में पंचेंद्रिय के साथ अंगोपांग को लिया था क्या, देख लो 51 पर. हाँ, इसी प्रकार औदारिक अंगोपांग और त्रस लिया था, और यहाँ इसी प्रकार वो चार संस्थान सहनन त्रस वगैरह को लिया. अब आगे पढ़ने के पहले नीचे का पैराग्राफ, पेज नंबर 54 पर, 54 अपना जहाँ चल रहा था अभी, हुंडा संस्थान को पढ़ने के पहले नीचे लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. औदारिक अंगोपांग का जगन्य अनुभव का कर रहा है, मिला क्या? अब बाकी बात, वहां पंचेंद्रिय जाति नियम से बंधेगी जो अनंत गुना अधिक बनता है, यानी यहाँ पंचेंद्रिय जाति और त्रस भी अनंत गुना अधिक बंधे, जो जघन्य है उनका मध्यम परिणाम में, यहाँ वो अनंत गुना अधिक बंध रहे. पर नियम से बंद करता है अनंत गुणा अधिक है, और पंचेंद्रिय जाति के साथ अंगोपांग नियम से बनता है और अनंत गुणा अधिक है. ये दोनों को लिए वो ऐसा अनंत गुणा अधिक कह रहे. एक तो कुछ होना चाहिए ना, पंचेंद्रिय जाति के उत्कृष्ट के साथ औदारिक अंगोपांग का नियम से और अनंत गुणा कह रहे, और जहाँ औदारिक अंगोपांग का जघन्य है वहां पंचेंद्रिय जाति को नियम से और अनंत गुणा कह रहे. ये घोटाला, ये उल्टा सुल्टा नहीं है, हमारे कुछ मिसिंग हो रहा है, उसका कारण ख्याल में नहीं आ रहा है. तत्प्रायोग्य में है, पर वहां पंचेंद्रिय का भी जगन्य होना चाहिए था, पर उसको वहां जगन्य नहीं लिया. जहां एकेंद्रिय के साथ परिवर्तमान है वहां जगन्य लिया है, मध्यम परिणाम में औदारिक अंगोपांग का तत्प्रायोग्य में लिया है. देखो हम चौथी पुस्तक में उसका बहुनति में उसका देखते ना, स्वामित्व देखना है ना, उत्तर प्रकृति में जगन्य का स्वामित्व 212-37. हाँ ना, देवों में देखो, पंचेंद्रिय जाति और देवों में सामान्य से, बहुनवासी की बात बाद में करेंगे. पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग और त्रस के जगन्य अनुभाग का स्वामी कौन है? तो सर्व संकलेश युक्त अन्यतर सनत कुमार से लेकर सहस्रार्थ कल्प तक का मिथ्या दृष्टि देव, वो जगन्य अनुभाग का स्वामी है. पर इसी प्रकार भवनवासी, ज्योतिष वगैरह वगैरह इतनी विशेषता है कि इनमें पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग और त्रस के जगन्य अनुभाग का स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य संकलेश उक्त अन्यतर मिथ्या दृष्टि देव उक्त प्रकृतियों के जगन्य स्वामी अनुभाग का बंध का स्वामी, अथवा अथवा कह के दूसरा विकल्प यहाँ बताया है, अथवा पंचेंद्रिय जाति और त्रस के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला अन्यतर मिथ्या दृष्टि देव उक्त प्रकृतियों के जगन्य अनुभाग का स्वामी. यहाँ दो विकल्प बताए हैं, इसलिए वहां दो अलग अलग कथन आ रहे हैं. पेज नंबर 219, चौथी पुस्तक 226 पर क्या है, पर आत्मा कहकर अलग बताए ना, अथवा कहकर अंगो पांग को नहीं लिया। अथवा देखो, अथवा पंचेंद्रिय जाति और त्रस को ही लिया, अंगो पांग को नहीं लिया। अंगो पांग का तो तत्प्राय के संकलेश में, देखो बंद होना नहीं होना की बात नहीं, जघन्य कहाँ होता है उसकी बात है। हाँ, यानी उसका जघन्य सर्व तत्प्राय के संकलेश में, पंचेंद्रिय जाति का मध्यम परिणाम में। पर जब अंगोपांग की बात कर रहे जगन की, तो पंचेंद्रिय जाति अनंत गुणा बनती है, ये ऐसा भी बताया। यह तो समान बताना था, अनंत गुणा क्यों बन रहे ख्याल में? अथवा के लिए अगर कहना है तो उसको अनंत गुणा क्यों कहा? ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। यानी जहाँ अंगोपांग शुरू हुआ है वहाँ वो अनंत गुणा पंचेंद्रिय जाति तो बनती है, परंतु अनंत गुणा बन रही वहाँ पर। पंचेंद्रिय जाति अनंत गुणा बन रही, जगन्य के साथ जगन्य नहीं होते ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जगन्य का विकल्प नहीं रखा, षट्स्थान का विकल्प नहीं रखा। पंचेंद्रिय जाति के साथ तो समझ नहीं, क्योंकि जहाँ मध्यम परिणाम में हमने पंचेंद्रिय जाति कही वहाँ औदारिक अंगोपांग तो अनंत गुणा होना ही होना है। अब कहते हैं औदारिक अंगोपांग के साथ भी पंचेंद्रिय जाति नियम से बंधेगी, पर यहाँ वो अनंत गुणा बन रही है, आगे जाकर वो जघन्य बंधेगी। जहाँ मनुष्य गति और तिरेंद्र गति का विकल्प है, एकेंद्रीय जाति और ऐसा लेना। हाँ, कन्फ्यूजन तो है ही है, क्योंकि एकेंद्रीय जाति और पंचेंद्रीय जाति का जहाँ आरस परस में हो रहा है ना, वहाँ वो मध्यम परिणाम लेना है, इसलिए भवनवासी को अलग से लिया। अकेले मनुष्य गति नहीं, पंचेंद्रीय जाति और एकेंद्रीय जाति का जहाँ परावर्तमान होता है वहाँ उसको जघन्य लिया। अन्य देवों में एकेंद्रीय जाति बनती नहीं है, तो पंचेंद्रीय जाति ही बंधेगी औदारिक अंगोपांग के साथ, तो वहीं पर दोनों का जघन्य होगा। अकेला तिरेंद्र गति नहीं, पंचेंद्रीय जाति का भी विकल्प है ना, मनुष्य गति भी, दोनों गति बंधेगी। नहीं नहीं, मध्यम परिणाम में है, उसमें समझने की क्या बात है। वही यही तो, वहीं पर मध्यम परिणाम लेना, जहाँ दो गति का भी विकल्प है वो पंचेंद्रीय जाति के लिए, और तिरेंच गति के जगन्य के लिए दो विकल्प है, एकेंद्रीय पंचेंद्रीय जाति के। तिरेंच गति का जहाँ जगन्य है वहाँ एकेंद्रीय जाति या पंचेंद्रीय जाति बनती है, जहाँ पंचेंद्रीय जाति का जगन्य है वहाँ तिरेंच गति या मनुष्य, यानी जहाँ वो औदारिक अंगोपांग है वहां तो अनंत गुणा अधिक बन रही है। बस इतना ही ले लो, ज्यादा अभी कोई जो कहीं मिल जाएगा तो देखेंगे, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा लगता है ना। औदारिक अंगोपांग के साथ उसको अनंत गुणा कहा, और पंचेंद्रीय जाति के साथ औदारिक अंगोपांग को अनंत गुणा। पंचेंद्रीय जाति के साथ तो समझ में आता है, पर औदारिक अंगोपांग के साथ, यानी वो मध्यम परिणाम में जाकर उसका अनुभाग जघन्य होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यही कह रहे। नहीं नहीं, यही लेना है मध्यम परिणाम में, क्योंकि दो स्वामित्व अथवा करके दो स्वामित्व बताए, तत्प्राय के संकलेश में बताए या मध्यम परिणाम में बताए, तो मध्यम परिणाम में लेकर ही यहाँ बात चल रही है। एक बात अभी अपने जहां से छोड़ा था वहां पढ़ेंगे, 54 पेज पर आना। देखो इसलिए पंचेंद्रिय जाति के समान अवतारिक अंगों पांग को नहीं लिया, पंचेंद्रिय जाति के समान त्रस को लिया और बाकी जब चार संस्थान चार सहन दो विवाह गति वगैरह को लिया, क्योंकि उनका भी जघन्य मध्यम परिणाम में होता है। अब आगे बढ़ेंगे कुंड संस्थान के, निकला ना 54 नंबर का पेज, फिर बाद में बताएंगे बताए नहीं। आपका कौन सा पेज है 54? हाँ, कुंड संस्थान के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अभी छह संस्थान मध्यम परिणाम में जघन्य बनते हैं, तो वहां क्या क्या बनती है, दो गति दो जाती है ना, एक इंद्रिय के साथ भी बनता है पंच इंद्रिय के साथ भी बनता है, परंतु ये कैसे हो गए, कदाचित वाले हो गए। छह सहनन लिया, क्योंकि एक संस्थान है तो अन्य संस्थान का कोई संबंध नहीं, दो अनुपूर्वी दो विहाय गति त्रस स्थावर और स्थिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, मिला देखो हुंड संस्थान के 116 पॉइंट, जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव दो गति दो जाति, दो गति कौन सी, मनुष्य तीर्यन, दो जाति एक इंद्रिय पंच इंद्रिय, छह सहनन, सहनन बंधेगा पंच इंद्रिय जाति के साथ, दो अनुपूर्वी दो विहाय गति, विहाय गति भी पंच इंद्रिय के साथ हो गया तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी, त्रस स्थावर और सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, शेष प्रकृतियों का भंग तीर्यंच गति के समान है, शेष प्रकृतियां ने कुंड संस्थान के साथ जो अन्य शेष प्रकृतियां बनती है तीर्यंच गति, जैसे हमने तीर्यंच गति के साथ क्या देखा था, गति के साथ दो जाति को लिया था, गति के साथ गति को लेना नहीं था, बाकी तो ऐसा ही लिया था, और गति के साथ सभी सहनन लिए थे, सभी संस्थान लिए थे, कुंडक संस्थान के साथ अन्य संस्थान नहीं लिए थे, बाकी सभी प्रकृतियां ने कौन सी 53 पेज पर देखी थी हमने, तीर्यंच गति के साथ जो सन्निकर्ष लगाया था ना कि औदारिक शरीर तेज, हुंड संस्थान के जघन्य के साथ औदारिक शरीर तेजस शरीर कारवान शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क वगैरह जो जिसको हम कहेंगे ध्रुवबंधी प्रकृतियां है वो अनंत गुना अधिक बंधेगी, भले वो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, और औदारिक अंगोपांग आतप और उद्योत का कैसा हुआ तो अनंत गुना बंधेगा, इस तरह से उसको समझना है, यानी संस्थान के साथ संस्थान नहीं लेते परंतु अन्य प्रकृतियां तो दोनों के लिए कथन समान होगा, इसलिए तीर्यंच गति के समान है ना, तीर्यंच गति के सन्निकर्ष के समान या तीर्यंच मार्गणा के समान नहीं लेना है। इस प्रकार हुंड संस्थान के समान दुर्भग और अनादेय की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि जब अन्य जो स्थिर विवरे लेंगे तो पंचेंद्रिय स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यश कीर्ति अयश कीर्ति की मुख्यता से भी ऐसा ही सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुण अधिक होता है, ये समझ में आया। पुण्य संस्थान के समान दुर्भग अनादि क्यों लिया, हाँ एक इंद्रिय भी बंधेगी पंच इंद्रिय भी बंधेगी, इस तरह से वैसे स्त्री अस्थिर के साथ भी वो बनती से, पर यहाँ एक इन एडिशन क्या बंधेगा, तीर्थंकर प्रकृति भी बन सकती है। अब औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, भवनवासियों में चल रही बात, अति संकलेश में उसका जघन्य होगा, एक इंद्रिय के साथ ही बंधेगा, जघन्य के साथ एक इंद्रिय ही बंधेगी, तो औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीर्यंच गति एकेंद्रीय जाति पुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां ली है, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी उपघात स्थावर और अस्थिर आदि पांच स्वर बिना लेना, नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि ये अप्रशस्त प्रकृतियां है और ये सर्वसंकलेश में वो उत्कृष्ट बनती है, और हमें तो जगन्नाथ के साथ कंपेयर करना है, तो सर्वसंकलेश में वो अनंत गुणा अधिक बन देगी अप्रशस्त प्रकृतियां। अब जो प्रशस्त प्रकृतियां है, तेजस शरीर, कारमन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है। तो औदारिक शरीर का जघन्य तो इनका भी जघन्य हो सकता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, आतप और उद्योत का कदाचित बंद करता है। कदाचित क्यों कहा, वो कि बंदेगी ऐसे कोई नियम नहीं है, पर है तो प्रशस्त प्रकृति और एक इंद्रिय के जाति के साथ वो बन सकती है, इसलिए कहते हैं यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, किंतु वह उसी प्रकार का होता है। अब औदारिक अंगोपांग के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, ये नियम से बंधेगी अभी इसके लिए। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, पुण्य संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु चतुष्क, अप्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो हरेक का कारण अलग अलग है। अब तिर्यंच गति है, औदारिक शरीर, तेजस, तिर्यंच गति का जघन्य कहाँ देखा था, मध्यम परिणाम में। पंचेंद्रिय जाति का कहाँ, मध्यम परिणाम में, वो यहाँ अनंत गुणा बंधेगी। ख्याल में आती है ना बात ये। और जहां पंचेंद्रिय जाति के साथ औदारिक अंगोपांग को देखा था वो सर्व संकलेश में, सॉरी तत्प्रायोगिक संकलेश में वो उसका जघन्य था, और यहाँ वो अनंत गुणा था, यानी अभी ये ख्याल में आ रहा है। हाँ ये बराबर बैठते हैं ना। तो यहाँ औदारिक अंगोपांग का जघन्य है तत्प्रायोगिक संकलेश में, परंतु पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कहाँ है, पंचेंद्रिय जाति बंध रही है पर उसका जघन्य मध्यम परिणाम है, इसलिए वो अनंत गुणा है। हाँ ये इसे सॉल्व होती है, यानी वहां बंद रही है परंतु जघन्य नहीं बंधेगी, अनंत गुणा अधिक बंधेगी, यानी भले वो संकलेश है यहाँ, मध्यम परिणाम की अपेक्षा संकलेश यहाँ ज्यादा है, तो पंचेंद्रीय जाति यहाँ अनंत गुणा अधिक बंधेगी। और पंचेंद्रीय जाति के जघन्य के साथ वो भी अनंत गुणा बनती थी, क्यों, क्योंकि वह सर्व संकलेश में जघन्य बनती थी और वहां परिणाम मध्यम है, यानी औदारिक अंगोपांग के साथ पंचेंद्रीय जाति वहां बन रही थी पर वो अनंत गुणा अधिक बन रही थी, उसका जघन्य अनुभाग कहाँ, मध्यम में हो आकर होगा, जहां परिवर्तमान होते वहां पर, यानी यहां उसका सॉल्यूशन मिल गया अभी। अब देखो ये फिर से अनंत गुणा क्यों कहा, हम अलग अलग प्रकृति को देखते, तिर्यंच गति का जघन्य मध्यम परिणाम में, पंचेंद्रिय जाति का भी मध्यम परिणाम में, वो यहाँ अनंत गुणा हो रहा है तत्प्रायोगिक में। औदारिक तेजस कारमान ये तो सर्व संकलेश में जघन्य और ये तत्प्रायोगिक संकलेश में अनंत गुणा हो रहा है। उच्च संस्थान और सहनन तो मध्यम परिणाम में जघन्य था, यहाँ वो हाँ अनंत गुणा अधिक है। प्रशस्त वर्ण चतुष्क औदारिक शरीर के साथ जो सर्व संकलेश में जघन्य होगा, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क समय दृष्टि के जघन्य होगा, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक है। अनुपूर्वी तो गति के समान, औदारिक शरीर का जघन्य है वो एक इंद्रिय जाति के साथ सर्व संकलेश में जघन्य बंधेगा, क्योंकि वो प्रशस्त प्रकृति है। नियम से बन रहा है, पंचेंद्रिय जाति में, इसीलिए वो अनंत गुणा बंधेगी। ना छह संस्थान छह संस्थान का मध्यम परिणाम में जो क्योंकि यहाँ तत्पराय के संकलेश है यहाँ वो नहीं बन रहे अन्य संस्थान और सहनन यहाँ नहीं बन रहे मध्यम परिणाम में आपस में उलट पुलट होते हैं यही तो मैं कह रही हूँ जहाँ पलट कर उसकी कोई प्रतिपक्षी बनती है ना वहाँ उसका जघन्य होता है यहाँ उदारी अंगोपांग ही बन रहा है नहीं बन रहा था बन रहा है यहाँ पर समझ में आती है देखो पर यहाँ स्थिति में मध्यम परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है स्थिति जगह ने किसके बंधेगी कब नहीं पर बहुनत्री के लिए जगह ने कितनी बंधेगी ना समय दृष्टि ना असंगी से आए हुए को अभी स्थिति को इसके साथ कंपेयर मत करो स्थिति में तो भवनवासी भी अंतर को अलग लेते हैं और ज्योतिष को अलग लेते हैं क्योंकि ज्योतिषी और सौधर्म ईशान में असंगी उत्पन्न नहीं होता है और वहां स्थिति को जगने के लिए हम अपर्याप्त को लेते हैं यहां उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे अनुभव का ख्याल में है ना फिर से क्या कहा वो अनंत गुणा लिया क्योंकि ये भी मध्यम परिणाम में जघन्य हो रहा है यहाँ वो अनंत गुणा हो रहा है नेचुरली क्यों सर्व संकलेश तत्प्राय संकलेश है तत्प्राय संकलेश में क्या बंधेगा अति अप्रशस्त वो बंधेगा मध्यम परिणाम में जहाँ वो दूसरे संस्थान इसके साथ बन सकते वहां पर वो मध्यम होगा यानी हुंडक संस्थान के जघन्य के साथ एकेंद्रीय जाति भी बन सकती है पंचेंद्रीय जाति भी बन सकती है तिर्यंच गति भी बन सकती है मनुष्य गति भी बन सकती है अब यहाँ औदारिक अंगोपांग का जघन्य हो रहा है तो तत्प्राय संकलेश है तो यहाँ तो हुंडक संस्थान और संप्राप्त त्रिपाठी का सहनन ही बन देंगे और वो अनंत गुणा अधिक बन देंगे हाँ ये सब ऐसी है कि जो कुछ तो है तो अति संकलेश में जगने बन रही कोई तो मध्यम परिणाम में यहाँ जो तत्प्राय संकलेश में दोनों ही जो प्रकृतियां बनती है वो कैसी बनती है तो अनंत गुणा अब इसमें से अप्रशस्त वर्ण और अगुर उपघात जो है वो समय दृष्टि के जगने बन रहे की यहाँ वो अनंत गुणा बनती है अब देखो यहाँ अप्रशस्त यहाँ गति ही बन रही है जो मध्यम परिणाम में जगन है वो यहाँ अनंत गुणा बन रही है त्रस चतुष्क भी हमने देखा ना त्रस चतुष्क में अलग बात है त्रस का जगन है मध्यम परिणाम में और बादर पर्याप्त प्रत्येक का जगन है तो अति संकलेश में यहाँ पर वो सभी प्रकृतियां अनंत गुणा बन रही है अस्थिर आदि छह तो मध्यम परिणाम में जगन्य है ये सभी प्रकृतियां अनंत गुणा हर एक प्रकृति के लिए अलग कारण है परंतु वह अनंत गुणा बनती है सबके लिए सामान्य से कथन है उद्योत का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है यानी इसके साथ पंचेंद्रीय जाति अनंत गुणा बन रहे बस इतना ही ले लेना आगे देखते देखते ये अंगोपांग हो गया हाँ? औदारिक शरीर हम अंगोपांग को लेते नहीं 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 पढ़ा पढ़ते हैं देखो 54 ने हाँ ये डिस्कशन के लिए औदारिक अंगोपांग को लिया था कुंड संस्थान हुआ था ना हमारा अब औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जी ये तो भवनवासी है सर्व संकलेश में उसका जघन्य होगा ये पढ़ा था मैंने पढ़ा था पहले हमने हुंडा संस्थान के पहले यहाँ का पढ़ा था परंतु मैं मुझे याद है अस्थिरादि पांच यानी स्वर बिना भी मैंने कहा था हो गया था अपना क्योंकि सर्व संकलेश में वो जघन्य होगा उसके अनुसार वो बाकी सब प्रकृतियां यहाँ पर केवल उसके जघन्य के साथ वो तेजस कारमान वगैरह वो जघन्य बन देगी अब यहाँ आते हैं 55 पेज पर सानत कुमार कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में प्रथम पृथ्वी के समान भंग है जैसे अभी हमने देखा था ना सामान्य देवों में भी देखा था जहाँ अंगोपांग का जघन्य वहीं पर पंचेंद्रिय का जघन्य होगा वहां पर क्योंकि सर्व संकलेश में वही तो बन रही यहाँ एक इंद्रिय जाति बनती नहीं है पंतीर्यंच गति और मनुष्य गति का जघन्य वहां पर मध्यम परिणाम में होगा इसलिए प्रथम पृथ्वी के यानी पहले पृथ्वी के नारके के समान भंग बताया आनत कल्प से लेकर नौ ग्रवेक तक के देवों में क्योंकि ये कैसे शुक्ल लेशा वाले हैं सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है परंतु यहां तो मनुष्य गति ही बनती है तो सर्व संकलेश में वो जघन्य बन देगी तो मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क मनुष्य गत्यानुपूर्वी अगुर लघु त्रिक त्रस्त चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है ये सारी प्रशस्त प्रकृतियां हैं किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है क्योंकि सबका स्वामी एक ही है वो सर्व संकलेश वाला यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है अब वो सर्व संकलेश वाला है अब यहां तो सारी अप्रशस्त अन्य कर्म बंधेगी जो अप्रशस्त बंधेगी तो कैसे बंधेगी अनंत गुणा बंधेगी तो कौन कौन सी बंधेगी मनुष्य गति के जघन्य के साथ कुंड संस्थान असंप्राप्ता सुरपाटी का सहनन अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिरादि छह लेना यहाँ पर इनका नियम से बंद करता है क्योंकि वो सर्व संकलेश वाला है मिथ्या दृष्टि है जो अनंत गुणा अधिक होता है इसी प्रकार मनुष्य गति के समान पंचेंद्रिय जाति आदि तंतु पतित सब प्रकृतियों की मुख्यता से सन्निकर्ष कहना चाहिए तंतु पतित का अर्थ होता है जो अभी हमने देखा था ना पंचेंद्रिय जाति औदारिक तेजस कर्मान शरीर औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क मनुष्य गत्यानुपूर्वी अगुरु लघुत्रिक त्रस्त चतुष्क और निर्माण ये सबको इसमें से एक एक को रखना और बाकी का जघन्य भी रजघन्य भी कहा तो सबका सन्निकर्ष ऐसा ही होगा अब सानत कुमार में समचतुर संस्थान के जघन्य की बात करें अब समचतुर संस्थान के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव अब ये सब छह संस्थान सहनन कहां पर जघन्य होते तो मध्यम परिणाम में तो यहाँ जो प्रशस्त प्रकृतियां है जो सर्व संकलेश में जघन्य बनती थी वो यहाँ पर अनंत गुणा बंधेगी तो समचतुर संस्थान के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमन शरीर औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क मनुष्य गत्यानुपूर्वी अगुर लघु चतुष्क चतुष्क को पूरा लेना क्योंकि प्रशस्त प्रशस्त सभी यहाँ पर अनंत गुणा होगी त्रस्त चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है ये कारण समझ में आती है बात ये क्या क्या सॉरी सॉरी अनंत से अनंत की बात चल रही है सनत कुमार तो पहली पृथ्वी के समान बता दिया अनंत कल्प की बात चल रही है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व में मनुष्य गति बन रही है। सनत कुमार के वहां तो क्या मनुष्य गति का जगन ने तो मध्यम परिणाम में देखा था, और यहाँ पर सर्व संकलेश में देख रहे हैं। देखो ये अनंत गुणाधिकृत है। अभी एक संस्थान लिया तो वहां छहो सहनन, क्योंकि मध्यम परिणाम में वो जगन्य हो रहे ना, तो मध्यम परिणाम में वो एक संस्थान लिया तो अन्य संस्थानों का ना काम नहीं यहाँ पर, परंतु छह सहनों का विकल्प है, दो विहाय गति है, सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। देखो अन्यत्र जहां मनुष्य गति तिर्यंज गति तो उनको उसको लेना पड़ता था, यहाँ पर मनुष्य गति ही बनती थ्रू आउट। तो ऊपर तो वो नियम से बनती अनंत गुणा तो देख लिया था, अब कदाचित में छह सौनन दो विहाय गति स्थिरादि छह, वो जगन्य भी और अजगन्य भी होगी, और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार पांच संस्थान, जैसे समचतुर्थ संस्थान का देखा था ऐसे सभी का, यानी हुंड संस्थान को भी छह सहनन दो विहाय गति और स्थिरादि छह युगल की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि तीन युगल और तीर्थंकर ने तीन युगल का जगन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव ऐसा चाहिए, क्योंकि उसका सन्निकर्ष के साथ, क्योंकि समय दृष्टि को भी जगन्य हो सकता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है, क्योंकि मध्यम परिणाम है, और तीर्थंकर प्रकृति का जगन्य किसके होगा, सर्व संकलेश तो नहीं कहेंगे, तत्प्राग संकलेश वाले को कहेंगे। देखो यहाँ और शब्द निकाल कर यहाँ लिखना है युगल के बाद का जगन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव, ऊपर भी हमने डाला था प्राकृत में नीचे से चौथी लाइन नवरी तिन्नी युग और तिथय सिया लिखा था, तो तिन्नी युग ज बम बीच में लिखा था, लास्ट टाइम लिखा हुआ है हमने पेज नंबर 55 पर, प्राकृत में आपने कुछ लिखा हुआ है ना नीचे से चौथी लाइन में, हाँ नवरी तिन्नी युग के बाद ज बिंदी बम बिंदी हमने किया है, अपन कोई नए सुनने वाले होंगे ना उनको करना है तो कर सकते हैं। और हिंदी में वो नीचे से तीसरी लाइन उस पैराग्राफ की 120 नंबर के पैराग्राफ की नीचे से तीसरी लाइन चौथी से पढ़ते, किंतु इतनी विशेषता है कि तीन युगल, युगल के बाद और शब्द है वो निकाल देना, और उसके बाद उसके जगह में लिखना है यानी तीन युगल का जगन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव, इतना लिखना है, यानी तीन युगल के साथ की बात है, तीन युगल का जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है, ये तो आगे ही लिखा हुआ है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। अप्रशस्त वर्ण चतुष, हाँ और निकाल के आपने लिखा हुआ है ना, का तीन युगल किया ठीक है, ठीक है जगन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव, आगे की बात वहां लिखी है, तीन युगल में किसी का लेना, स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ, यश या अयश, आगे बढ़े, अभी हो गया आपका लिखना। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात और तीर्थंकर प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष सामान्य देवों के इन प्रकृतियों की मुख्यता से जैसा कहा है वैसा है। देखो हम देखते हैं अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात की बात करते हैं, उसका जगन्य किसके है? समय दृष्टि सर्वविशुद्धि के। अब ये दो ही अप्रशस्त है, बाकी जो प्रशस्त यहाँ बंधेगी, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य गति ही बंधेगी, वो तो मिथ्या दृष्टि को भी आनंद से लेकर मनुष्य गति बनती थी, परंतु यहाँ तो कैसी बंधेगी? अनंत गुणा बंधेगी। तो मनुष्य गति के साथ बंधने वाली सभी प्रकृतियां जो कहे वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अब तीर्थंकर के लिए अलग लेना, तीर्थंकर प्रकृति भी समय दृष्टि बांध रहा है, पर वो तत्प्राय के संकलेश में बांध रहा है, परंतु वहां जो सभी प्रकृतियां बन रही है, भले वो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क भी अनंत गुणा होकर बन रही है और बाकी मनुष्य गति वगैरह प्रशस्त प्रकृतियां भी अनंत गुणा बंद हो रही है, यानी उसके साथ बाकी सभी प्रकृतियां अनंत गुणा अधिक बनती है। समझ में आई ये बात? केवल अप्रशस्त वर्ण के साथ अन्य तीन और उपघात को जघन्य अजघन्य ले सकते। अरे देवा अब अनुदिश से लेकर सर्व देखो, यहाँ कोई बैठता नहीं है ना, कोई आके गया तो भी पता नहीं चलता है, सामने कोई बैठा है तो कोई बात नहीं होती। देखो अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के, यहाँ तो सारे समय दृष्टि है, सात कर्मों का भंग आनत कल्प के समान है, उसमें तो कोई विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, यहाँ कुछ प्रकृतियां बंधेगी ही नहीं, इतनी विशेषता है कि स्त्यान वृद्धि त्रिक मिथ्यात्व अनंतानुबंधिचार स्त्री वेद नपुसक वेद और निज गोत्र को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। क्यों? ये समय दृष्टि है, ये प्रकृतियां समय दृष्टि को नहीं बनती, यानी उसका सन्निकर्ष को कहने का सवाल ही नहीं आता। यानी उसमें सन्निकर्ष में मोहिनी में कैसा शुरू करेंगे हम? मोहिनी में बारह कषाय में से एक कषाय लेना पहले, यानी अप्रत्याखानावरण क्रोध का जघन्य बंद करने वाला जीव, अन्य ग्यारह, फिर वहां बंधने वाली सब ले लो। हाँ बरोबर है। इस तरह से वहां लेना है मनुष्य। अभी है कहां की बात चल रही है? अनुदिश अनुत्तर के, मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाले देव का भंग आनंद कल्प के समान है। अभी यहाँ तो सर्व संकलेश वाला लेना, यहाँ तो मिथ्यात्व में जाने का कोई सवाल नहीं है, चौथे के योग्य वहां जो कोई संकलेश होता है। हाँ तो मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला है देव का भंग आनंद कल्प के समान है, इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति का नियम से बंद करता है जो अनंत गुना अधिक होता है। क्योंकि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात तो सर्व विशुद्धि वाले के होता है, यहाँ वो सर्व संकलेश वाला है, वो अनंत गुना होता है। अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति का मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, यहाँ वो अनंत गुना अधिक हो रहा है क्योंकि ये संकलेश वाला जीव है। यानी अस्थिर अशुभ अयशी ही नियम से बंधेगी, परंतु अनंत गुना अधिक बंधेगी। अब समचतुर संस्थान वज्रषभ नाराज सहनन प्रशस्त विहाय गति, ये सब ध्रुवबंदी है उनके लिए, सुभग सुस्वर और आदेय का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। क्या 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 देखो, वो तो पहले बताए थे ना, सात कर्मों का भंग अनंत कल्प के समान है। हाँ, अब यहाँ नाम कर्म की बात कर रहे थे, तो मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव वहां पर ले लिया ना, निकालो अनंत कल्प पीछे के पेज में। अनंत की बात 119 पैराग्राफ सेकंड लाइन से शुरू हुई थी। वो मनुष्य गति तीसरी लाइन में क्या है, वहां पर मनुष्य गति का जघन्य कर रहा है। वहां तो अनंत में मनुष्य गति का जघन्य करने वाला तो मिथ्या दृष्टि सर्वसंक्लेश वाला है। तो वहां जो बनती है ना पंच इंद्रियातीत औदारिक तेजस वगैरह वगैरह वगैरह, उनका जघन्य भी और अजघन्य भी होता है, और उसी के समान तंतु वाली सारे प्रकृतियों का होता है। ये बात उन्होंने अनंत के समान बता दी, क्योंकि यह यही प्रकृति बनती है। वहां मिथ्या दृष्टि को जघन्य थी सर्वसंक्लेश, यहाँ समय दृष्टि को सर्वसंक्लेश में जघन्य बन देगी, है तो एक ही गुणस्थान यहाँ पर। यानी जो नहीं लिखा है ना वो उसके समान लेना। हाँ, पर वहां क्या और यहाँ का क्या डिफरेंस था? देखो देखो, मनुष्य गति वहां मनुष्य गति ही बनती है, मनुष्य गति अनंत में मनुष्य गति ही बनती है, मिथ्या दृष्टि है। तो मनुष्य गति के जगन्य के साथ कौन सा संस्थान बन रहा था? नियम से बन रहा था। अभी यहाँ डिफरेंस है, यहाँ समय चतुर संस्थान ही बंधेगा। हाँ, परंतु ये सब कैसे, क्योंकि ये सब प्रशस्त प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति भी प्रशस्त है, ये भी प्रशस्त है, तो ये भी जगन्य भी अजगन्य भी बंधेगी। मिला आपको? 56 पेज पर पढ़ रहे हम, चौथी लाइन से फिर पढ़ती हूँ। समय चतुर संस्थान वज्रिषभ नाराज सहनन प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर और आदेय का नियम से बंद करता है। ये डिफरेंस क्या है उसकी बात हो रही है। पर अनंत में मनुष्य गति का जघन्य जो हो रहा था, मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम में था। हाँ, और नहीं, मिथ्या दृष्टि सर्वसंक्लेश वाला था। हाँ, और ये समय दृष्टि है, तो समय दृष्टि के यही प्रकृतियां बंधेगी, वो नियम से बंधेगी, जघन्य भी बंधेगी और अजघन्य भी बंधेगी। यदि अजघन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। वहां ऐसा नहीं था, वहां मनुष्य गति का जघन्य तो मिथ्या दृष्टि का था और तीर्थंकर का प्रकृति तो समय दृष्टि को बनती थी, वहां बनती नहीं थी। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार तंतु पतित जितनी प्रकृतियां हैं उनकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी मनुष्य गति के साथ जो जघन्य बनती है उसके साथ। किंतु इनमें से किसी एक के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का यथासंभव बंद करता है। यथासंभव यानी जघन्य भी अजघन्य भी, जो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। यहाँ अकेले समय चतुरस वगैरह नहीं लेना, उदारिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर अंगोपांग सभी को ले लेना, जो नियम से बनती है और वो प्रशस्त बन रही है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जैसा इनकी मुख्यता से सामान्य देवों के कहे आए हैं उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि ये अप्रशस्त प्रकृतियां हैं और समय दृष्टि सर्वविशुद्ध वाले को ये जघन्य बंधेगी और बाकी तो सारी प्रशस्त ही बनती है जो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अब स्थिर प्रकृति के, ये कहाँ की बात चल रही है? अनुदिश अनुत्तर में। उनके लिए स्थिर अस्थिर वगैरह मध्यम परिणाम में जघन्य हो गए, तो स्थिर प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव शुभ अशुभ यश कीर्ति और अयश कीर्ति का कदाचित बंध करता है। अब स्थिर बनता है तो अस्थिर का कोई सवाल नहीं है, बाकी ऑप्शनल रही दो तो कदाचित बंध करता है। यदि बंध करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंध करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुणाधिक होता है, क्योंकि यहाँ सिर का जघन्य मध्यम परिणाम है और तीर्थंकर प्रकृति यदि बनती है उसका जघन्य कहाँ होगा, तो संकलेश वाले को होगा। जो संकलेश में जघन्य बनती है वो मध्यम परिणाम में अनंत गुणाधिक बंधेगी। इसी प्रकार तीन युगलों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी स्थिर का बता दिया, अस्थिर का ऐसा ही है, शुभ का अशुभ का यश का यश गिरता सबका सन्निकर्ष ऐसा ही होगा। अब ये मार्गणा हो गई हमारी, देवों की इन जनरल और उनके विस्तार से भेदों की चर्चा हुई। पंचेंद्रिय द्विक, डायरेक्ट पंचेंद्रिय द्विक को क्यों लिया इंद्रिय मार्गणा में? हाँ, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों का उसके समानता, किसके? पंचेंद्रिय तीरंच पर्याप्त के समान। उसमें जो विशेषता थी अग्निकाय वायुकाय की वो भी हमने देख ली थी। तो पंचेंद्रिय द्विक, त्रस द्विक लिया क्योंकि अन्य जो पांच स्थावर कायिक है वो तो पंचेंद्रिय अपर्याप्त के समान देख लिया था। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, क्रोधादि चार कषाय वाले, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, भव्य मिथ्या दृष्टि, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, वो श्रुत ज्ञानी उसको श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, असंयत संगी असंगी और आहारक जीवों के ओघ के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि कुछ विशेषता जाननी चाहिए। देखो क्या कहना चाहते हैं, इन सब में जो है, ये तो संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसमें कितने हैं? अभी उसमें शपक श्रेणी भी घटित होती है। हाँ, ज्ञानावरण का जघन्य तो अन्य का भी जघन्य ही होगा, ज्ञानावरण में चार, दर्शनावरण में और पांच अंतराय में। बाकी निद्रा के जघन्य है वहां पर प्रचला का जघन्य या अजघन्य होगा और बाकी सारे का अनंत गुना होगा। अब वैसे भी जो पंचेंद्रिय द्विक है, त्रस द्विक है, वो उसमें जो स्थान वृद्धि वगैरह का भी भंग संयम के सन्मुख वाले को होता है वो भी घटित हो जाएगा। वहां पर अन्य नौ, जो नौ में से बाकी भी बंधेगी स्थान वृद्धि के साथ, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, जघन्य भी अजघन्य भी, और बाकी छह बंधेगी नियम से, वो अनंत गुना अधिक बंधेगी। इस तरह से उसमें लेना। बाकी तो मोहनीय का भंग है या नाम कर्म का भंग है, पंचेंद्रिय कहने से चारों गति के आ गए तो वो के समान हो जाएगा। त्रस कहने से भी जहां जो जघन्य का स्वामी है वही संगी पंचेंद्रिय होते हैं तो वो भी यहां कर घटित हो जाएगा। मनोयोगी वचन योगी लिए पांचों, काय योगी लिए, औदारिक काय योगी, उसमें वो श्रेणी की भी बात घटित होती है। और जो सर्व संकलेश वाले को जघन्य बनती है प्रशस्त प्रकृति, वो भी यहाँ जघन्य बात घटित होती है। ये सभी मार्गणाओं में ये बातें घटित हो जाती है। अब भव्य में तो ठीक है, वो श्रेणी है, मिथ्या दृष्टि में भी ले लिया। मिथ्या दृष्टि मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी में जो है वहां जघन्य कैसे कहेंगे हम? संयम के सन्मुख वाले के ज्ञानावरण वगैरह उसका जघन्य होगा। मोहनीय का भी मत्य ज्ञानी मिथ्यात्व में ही उसका जो है जघन्य होगा, तो सर्व विशुद्धि वाले को जघन्य होगा। बाद में तो उसकी मार्गणा पलटेगी। यानी मिथ्या दृष्टि मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी में संयम के सन्मुख वाले को लेना, और प्रशस्त का जघन्य, बाकी प्रशस्त का जघन्य तो सर्व संकलेश वाले को लेना, असंयत मार्गणा में संयम के सन्मुख वाले को अप्रशस्त वाले का जघन्य होगा, और बाकी तो प्रशस्त का सर्व संकलेश में, बाकी मध्यम परिणाम में जो जघन्य बनती वो तो बता ही दिए, क्योंकि वहां तो सामान्य से अभी कौन सी मार्गणा चल रही उसके अनुसार, अगर वहां सातवें नरक का नारक नहीं है और अग्नि का एक वायु का एक नहीं है तो चारों गति का जघन्य मध्यम परिणाम है, यानी चार गति है, छह संस्थान छह सनन वगैरह सब ले लेना, चार जाति भी जिस मार्गणा में जो बनती है उसकी बात ले लेना। तो असंयत संगी असंगी और आहारक जीवों के ओग के समान भंग है। इतनी विशेषता के कुछ इतनी विशेषता है कि कुछ विशेषता रहनी चाहिए। नहीं नहीं, विशेषता क्या है, कौन सी प्रकृतियां बनती है या उसका स्वामी कौन है उसके अनुसार ले लेना है। क्या विशेषता है, जैसे पंचेंद्रिय में ज्ञानावरण का एक का जघन्य तो दूसरे का जघन्य ही होगा क्योंकि वो श्रेणी में है, और संयम के सन्मुख में जघन्य भी है और अजघन्य भी है, ये उसकी विशेषता होगी। देखो औदारिक कायोगी जीवों में, ऊपर बताया था ना औदारिक कायोगी जीवों में सामान्य मनुष्यों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष, जिस प्रकार सामान्य तिर्यंचों में इन प्रकृतियों की मुख्यता से कहा है उस प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि अग्नि का एक वायु का एक सर्व विशुद्ध वाले को लेना, क्योंकि वहां पर भी औदारिक का योग तो है ही, यानी औदारिक का योगी में वो श्रेणी भी घटित होगी और बाकी तिर्यंच गति के जघन्य के लिए अग्निकायिक वायुकायिक की भी बात घटित होगी। क्रोध कषाय में, यानी कहां क्या विशेषता है वो बता रहे, क्रोध कषाय में क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव वो अन्य तीन का कैसा करेगा, नियम से बंद करेगा। तो नियम से जग क्रोध के लिए वो जघन्य कहलाएगा क्योंकि नव गुण स्थान है। मान कषाय में मान संज्वलन का जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव दो संज्वलनों का नियम से जघन्य अनुभाग बंद करता है, क्योंकि हमारी मार्गणा कषाय वाले की है। ओग में अगर कहते तो जहां क्रोध का जघन्य है वहां मान माया लोभ का अनंत गुना होता है, हमारी कंडीशन ही क्रोध कषाय वाला है। मान कषाय में देख लिया कि मान संज्वलन का जघन्य करने वाला अन्य दो संज्वलनों का नियम से जघन्य अनुभाग बंद करता है, यानी उस कषाय में उसका जघन्य है वहां पर। माया कषाय में माया संज्वलन का जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव लोभ संज्वलन का नियम से जघन्य अनुभाग बंद करता है। शेष प्रकृतियों का मोह के समान विशेष जानना चाहिए। शेष प्रकृतियों का यानी क्या, जो नाम कर्म वगैरह जो है ना, मोह के समान ने मोहनी के समान ही बताने ने उनको, क्योंकि ये संज्वलन को ही डिफरेंस है क्रोध कषाय मान कषाय वगैरह, बाकी तो अन्यत्र तो नीचे के आठवें तक तो कोई जैसा ओग में कथन है वैसा ही होगा। बाकी जहां जो जिस मार्गणा में प्रकृति बनती है उसकी वहां पर ले लेंगे हम। अब औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है। तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का भंग ओग के समान है। देखो यहां पर स्वामी अग्नि का एक वायु का एक है और जघन्य बंद करने वाला है ना, तो उसका जघन्य बंद कौन करेगा औदारिक मिश्र में, औदारिक मिश्र है ना अपर्याप्त जीव है। हाँ पर वो तो मिश्र, वो तो अंतिम समय में सर्व विशुद्ध होता है उसी को लेना पड़ेगा, यानी जो निवृत्ति अपर्याप्त वाला लेना पड़ेगा ना, विलब्धि अपर्याप्त को नहीं लेना, निवृत्ति अपर्याप्त को लेना, यानी वहां उसका जघन्य होगा। तो उसके जघन्य के साथ क्या क्या बंधेगा? हाँ, सर्व विशुद्ध है तो पंच इंद्रिय जाति बंधेगी, उसके साथ औदारिक शरीर वगैरह वगैरह सब बंधेगा। तो वो कैसे बंधेगा? तो ये अप्रशस्त प्रकृति है, वो जघन्य बन रही है, और वहां प्रशस्त प्रकृतियां वो अनंत गुना बन देगी। अब मनुष्य गति पांच जाति, पांचों जाति का लिया, छह संस्थान छह सहनन, मनुष्य गत्यानुपूर्वी दो विहाय गति, त्रस स्थावर आदि चार युगल, सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदे अनादे की मुख्यता से सन्निकर्ष, जिस प्रकार इन प्रकृतियों की मुख्यता से पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के कहे आए हैं उस प्रकार जानना चाहिए। क्योंकि अपर्याप्त में हमने बहुत विस्तार से देखा था, ये तो कल ही देखना पड़ेगा, अभी 44 पेज पर हमने देखा था, एक एक को फिर देखेंगे हम 44 पेज पर मनुष्य गति की बात। हाँ, तिर्यंच अपर्याप्त की बात 43 से शुरू हुई थी, पर मनुष्य गति का जघन्य कर रहा है वो। देखो 44 पर एक पैराग्राफ इतना पढ़कर बंद करते, कल फिर दोबारा देखेंगे 44 पेज। मिला क्या आपको मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव? ये मध्यम परिणाम है जघन्य ना, तो पंचेंद्रिय जाति ये भी पांचों जाति उसके लिए मध्यम परिणाम में बनती है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रस बादर और प्रत्येक का नियम से बंद करता है, क्योंकि मनुष्य गति के साथ त्रस बादर प्रत्येक बंधेगी, वह जघन्य का भी बंद करेगा अजघन्य का भी, और बाकी यानी वो पर्याप्त भी बांध सकता है अपर्याप्त भी बांध सकता है, पर त्रस बादर पर्याप्त को नियम से में लिया। ऐसे पांच जाते ये सब कैसे है, तो मध्यम परिणाम में जघन्य बनती है, उसकी कल हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली 124 नंबर का है ना पैराग्राफ, यहीं से शुरुआत करेंगे, आज यहीं रुकते हैं। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो।